अभी तक जो चीजें की हैं उसको हम एक गो थ्रू करेंगे। प्रेजेंटेशन है वफात से दफन तक। हमने मौत के बारे में थोड़ा देखा, मौत की हकीकत क्या है, हर इंसान को दुनिया से जाना है, इस मौत से भागकर कहीं जा नहीं सकते, गैब और हाजिर को जानने वाले के सामने पेश किए जाएंगे, फिर लज्जतों को मिटाने वाली चीज यानी मौत को याद रखना है, और अगर अल्लाह लोगों को पकड़ ले तो कभी छोड़े ना। मौत की आरजू नहीं करनी, हाँ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे तब तक जिंदा रखना जब तक जिंदगी मेरे हक में बेहतर है, और मौत का वक्त भी मुकर्रर है, भाग नहीं सकते, बाबरकत जगह पर मौत की दुआ की जा सकती है। अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए मौत के वक्त, मरने वाले के पास शोर और हंगामे से परहेज करनी चाहिए, और जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो अल्लाह ताला उसको जन्नत देगा। मौत के वक्त खौफ और उम्मीद की किरण दिखनी चाहिए, और अल्लाह के नबी की चंद दुआएं हमने सीखी कि जो मौत के मरहले को आसान करती हैं। फिर इसके बाद हमने आखिरी सफर की तैयारी की कि कैसे हर एक अकेला आएगा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि जब कोई मरने वाला हो तो क्या किया जाए। पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जाएगा, मरने वाले की आंखें बंद की जाएंगी, हाथ पांव सीधे किए जाएंगे, फिर एक चौड़ी सी पट्टी मैयत की ठोड़ी के नीचे से निकाली जाएगी, चादर से ढांप दिया जाएगा, चेहरा नहीं देखा जाएगा, करीबी रिश्तेदारों को खबर दी जाएगी, मैयत के माल में से कफन दफन के खर्चे लिए जाएंगे, मैयत के जिम्मे कोई कर्ज हो तो उसको अदा किया जाएगा, माल नहीं छोड़ा तो आपकी तरफ से वो अदायगी होगी। फिर हमने विल को देखा था कि अल्लाह ताला ने वसीयत का हक देकर मरने के बाद भी हमारे माल में हमारा हिस्सा रखा, जिसकी डिटेल्स हमने आज पढ़ी, मतलब तीसरा हिस्सा होता है। फिर हमने जनाजे की तैयारी के कामों में गुस्ल मैयत को देखा था कि किस तरह से मैयत के गुस्ल के वक्त केयरफुल रहा जाएगा, और उसमें क्या क्या सामान चाहिए होगा, और गुस्ल का तरीका देखा था। आज हम इंशाल्लाह जहां से शुरू करेंगे वो है कफन। अब आप सब इसके साथ अपने आप को लेकर सोचें, कफन क्या है? आखिरी लिबास, सोचिए जरा। अपने कपड़े देखिए, इस वक्त कौन से कपड़े पहनने में? कहीं भी जाते हैं तो अच्छे कपड़े पहनते हैं और पहनने चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारा अगला जोड़ा क्या होगा। कफन वो कपड़ा होगा जिसके बाद फिर हम कोई और नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान करे। नेक शख्स के लिए जन्नत से कफन लाया जाता है, बद शख्स के लिए जहन्नम से कफन लाया जाता है। कफन के मामले में इंसान को बहुत ज्यादा इसराफ का मामला नहीं करना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वफात का जब वक्त हुआ तो उन्होंने कहा कि बेटा मुझे पुरानी चादरों में कफन देना, नई चादरें जिंदों के काम आएंगी। और फिर जेरे लब मुस्कुराए और कहने लगे, वैसे भी तो ये चादरें थोड़ी देर में उतर ही जाएंगी, अल्लाह हमें भी इतना ही यकीन दे दे जन्नत और जहन्नम पे भी। तो लिहाजा कफन के मामले में कुछ बिदात भी हैं जिसको हम एंड पे देख सकते हैं, लेकिन खामखा उसको जमजम के पानी में धुलवा के रखना या काबे के गिलाफ का टुकड़ा रख देना, इन चीज़ों से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में एक ऐसा शख्स भी गुजरा कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ते में दफनाया गया था, लेकिन वो कुर्ते में दफनाया जाना उसकी बख्शिश ना करवा सका, और उस शख्स का नाम अब्दुल्ला बिन उबई है। सूरह तौबा में इसके बारे में बात आती है। तो लिहाजा कफन के ऊपर कहीं कुछ लिखना, कहीं कुछ, और कलमा लिखवाना, ये सब कुछ सुन्नत से साबित नहीं है। कफन को अगर आप टेक्निकली देख लीजिए तो कैसा हो सकता है? पहली बात है कि सफेद हो तो बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने मर्दों को सफेद कपड़े में कफनाओ, और साफ सुथरा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफेद लिबास पहना करो, ये तुम्हारा बेहतरीन लिबास है, और इसी में अपने मर्दों को कफन दिया करो। तिर्मिजी की रिवायत है। मकदार कितनी होगी? कफन के लिए कपड़े की मकदार या पैमाइश इतनी हो कि आसानी से मैयत का तमाम जिस्म ढांपा जा सके। नामुकम्मल और ना काफी कफन किसी मजबूरी या उजर के बगैर रखना नापसंदीदा। अल्लाह के नबी ने एक दिन खुतबा इरशाद फरमाते हुए एक सहाबी का तस्करा फरमाया जिसे वफात के बाद ना काफी कफन पहनाया गया और रात को दफन कर दिया गया। आपने सख्ती से मना फरमाया कि किसी को रात को दफन ना किया जाए, हत्ता कि इसकी नमाज जनाजा अदा की जाए। इल्ला ये कि इंसान मजबूर हो। फिर फरमाया जब कोई मुसलमान अपने भाई को कफन दे तो अगर मुमकिन हो तो अच्छा कफन दे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अच्छे कफन से क्या मुराद है? कीमती? नहीं, साफ सुथरा हो, मोटा हो, सारे बदन को छुपाने वाला हो, दरमियानी किस्म का हो, यानी बहुत महंगा भी ना हो और बहुत घटिया भी ना हो। जरूरी भी नहीं कि वो नया हो, पुराना भी हो सकता है, धुला हुआ हो, साफ हो। और यहाँ आपके लिए स्टॉल पे मैंने देखे हैं कि कफन रखे हुए हैं। मर्द का औरत का फर्क होता है। अगर आप में से कोई अभी से इसके लिए तैयार है तो वो लेना चाहे तो अपने लिए ले सकता है। फिर हम देखेंगे मर्द और औरत के कफन का फर्क क्या है। मर्द के लिए कफन में तीन कपड़े इस्तेमाल होते हैं। आजार यानी तहबन, यानी एक चादर ऐसी बिछाई जाती है नीचे जो के जिस्म के निचले हिस्से को छुपाई की। फिर एक कमीज है जो ऊपर होती है, जो कमीज की शक्ल में होगी, यानी उस चादर को मिडल में से गले की तरह से काट कर एक बीच में कट दे दिया जाता है और उसको आधा हिस्सा जमीन पे बिछा दिया जाता है, यानी जमीन से मुराद जिस तख्ते पे उसको मैयत को लिटाना होता है। फिर मैयत को लिटाकर वो कट जो होता है गोल सा, उसको सर से गुजार कर ऊपर का हिस्सा फिर आगे रखा जाएगा। फिर इसी तरह तीसरी चीज लिफाफा, यानी ऊपर की चादर। हजरत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी को तीन धोई हुई सुफेद सूती सहूली चादरों, यानी यमन की बनी हुई हल्की धारीदार चादरों में कफन दिया गया। इसमें ना कमीज थी ना पगड़ी, और मर्दों के लिए नहीं तीन कपड़ों का हुक्म है। ये बुखारी की रिवायत है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं अपने सामने तो इसमें सबसे नीचे जो चादर बिछती है ना, ये है लिफाफा, ये नोट कीजिएगा। सबसे बाद में जिसका जिक्र हुआ है ना, वो सबसे पहले बिछाएंगे तख्ते पे। फिर उसके ऊपर आप देख रहे हैं थोड़ी सी उससे ऊपर करके एक चादर, ये है आजार ट्राउजर के तौर पर। और सबसे ऊपर जो आपको मिरर में छोटा हिस्सा दिख रहा है जो ऊपर से रोल किया गया, ये है ऊपर कमीज। अब इस तरह बिछाकर इस पे मुर्ते को जब लिटाते हैं, सबसे पहले कमीज ऊपर से फोल्ड करके गले के रास्ते से पहना दी जाएगी, फिर जो तहमन थी उसको बांधा जाएगा, और आखिर में फिर वो तीसरी चादर जो थी वो पूरे में लपेट दी जाएगी। औरत मैयत का कफन क्या है? पांच कपड़े इस्तेमाल होते हैं। सर का रुमाल और ओढ़नी, ये मर्द से एक्स्ट्रा होगा। आजार तहबन, सीना बन, औरत का सतर और रानों का हिस्सा बांधा जाएगा, और कमीज चादर जो कमीज की शक्ल में ऊपर से आएगी, और लिफाफा। तो आप देख रहे हैं कि दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, सर का कपड़ा और सीने के ऊपर एक एक्स्ट्रा कपड़ा बांधा जाएगा। हजरत फातिमा का मुझे कॉल याद आ रहा है कि उन्होंने अपनी दोस्त से इस बात का शिकवा किया था कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है कि मरने वाले जब औरत के साथ ये सलूक करते हैं कि उसके जिस्म पर जो कपड़ा रखते हैं उससे उसके जिस्म के उभार दिखते हैं। तो उनकी दोस्त ने कहा कि मैं हबशा में गई थी तो मैंने देखा था कि उस वक्त वो औरत को जब कफन पहनाते हैं तो जिस चारपाई पे रखते हैं उसके चारों तरफ छड़ियां लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं जिससे पता नहीं चलता कि अंदर औरत कैसी थी। तो खुश हुई और कहने लगी कि मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ऐसा ही करना। हम सबके लिए इसमें एक नसीहत है कि वो मरने के बाद इतना बाहया लिबास पहनती थी, हम आज अपने बारे में सोचें कि हम जिंदगी में अपने लिबास के बारे में कितने कॉन्शियस हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हया दे दे। इसके बाद है नमाज जनाजा। इसका तरीका, पहली बात है कि नमाज जनाजा में शरीक होना बायस सवाब और अजर है। तरीका क्या है कि इसके लिए ना तो अजान है और ना इकामत है। नमाज जनाजा के लिए भी बावजू और किबला रूह होना शर्त है। नमाज में सफ़ों की तादाद ताक रखी जाए, थोड़े लोग हों तो एक या दो सफ़ें भी काफ़ी हैं। इमाम को मर्द मैयत के सर के मुकाबिल और औरत को मैयत के वसत में रखा जाएगा। जो पिक्चर आपके सामने बनी हुई तो इसको देख रहे हैं तो किबले रूह है सब, मैयत मर्द है, तो आप देखिए कि इमाम जो है वो मेल के बिल्कुल सर के सीध में है, जबकि औरत को इस तरह रखा जाता है कि उसके मिडल में इमाम है और सफ़ें ताक हैं। आप सफ़ों को गौर से पढ़ें तो सबसे अगली सफ़ इन्होंने मर्दों की दिखाई है इमाम के बाद, फिर उसके बाद बच्चों की, और तीसरी सफ जो है वो औरतों की है। यही तरीक़ाकार होगा, जितने मर्द ज़्यादा होते जाएंगे मर्दों की सफ़ें उतनी बढ़ती जाएंगी। फिर नमाज जनाजा मर्द और औरत दोनों का एक ही वक्त में हो तो मर्द की मैयत इमाम की तरफ और औरत की मैयत इसके अगली तरफ, यानी किबले की रुख रखी जाएगी, यानी पहले मर्द की होगी और फिर औरत की उसके बाद होगी। और हरम में इस तरह ही होता है, एक से ज़्यादा मैयतें होती हैं। इस नमाज में चार तकबीरों के साथ सिर्फ क्याम है, ना रुकू है ना सजदा। वजह साफ जाहिर है कि सामने एक इंसान है, चाहे वो फौत हो चुका है। यहां मैं हल्की सी बात करना चाहूंगी कि आज नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, और ये किसी बुजुर्ग का, किसी वली का भी हो सकता है। आज अब उसके सामने नहीं झुक पा रहे तो कब्र में जाते ही इसके आगे कैसे झुकेंगे? आज रुकू नहीं है तो कब्र में जाते ही रुकू कैसे होगा? आज ये कफन के बंद खोल के आपकी मदद नहीं कर सक रहा तो कब्र में जाते ही ये इतना करनी वाला कैसे हो गया? ये जुमले उन लोगों के लिए हैं कि जो आज भी कब्रों पे जाकर इस किस्म के काम करते हुए दिखते हैं। बहरहाल, नमाज जनाजा कैसे, और हम सबको आनी चाहिए, क्योंकि औरतें भी पढ़ेंगी तो उनके लिए भी उतना ही अजर है जितना मर्दों का है। खास तौर पे जब आप हज और उमरे पे जाते हैं तो वहां तो हर नमाज के साथ आपको मौका मिल जाता है। नमाज जनाजा में पहली तकबीर यानी अल्लाह अकबर के बाद सूरत फातिहा है, दूसरी तकबीर के बाद दुरूद शरीफ है, तीसरी तकबीर के बाद दुआ, और चौथी तकबीर के बाद आहिस्ता से सलाम फेरा जाता है। हर तकबीर पर हाथ उठाया जाएगा, जिसको रफुल यदैन कहते हैं, या सिर्फ पहली तकबीर के वक्त हाथ उठाना, दोनों ही ठीक है। यानी अल्लाह अकबर तो कहा जाएगा, हाथ उठाया जाए या ना उठाया जाए, इसमें बेहतर यह कि हाथ उठाया जाए। दो सलाम कहकर इस नमाज को खत्म करना या एक ही सलाम पर खत्म करना, दोनों तरीके सुन्नत से साबित है। आजकल हरम में जो इमाम है वो एक ही तरफ सलाम फिरवाते हैं, तो दोनों की रुख्सत है। बहुत सी मैयतें हों तो एक ही नमाज़े जनाजा पढ़ना भी दुरुस्त है, और हर जनाजे पर अलहदा अलहदा नमाज पढ़ना भी जायज है। ये होती क्या, इसके असल हम बाद में देखेंगे, सिर्फ इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। दुआए मगफरत, नमाज जनाजा दरअसल मरने वाले के लिए दुआए मगफरत के साथ साथ एक सिफारिश और एक गवाही भी है, और इसी तरह जिंदों पर मैयत का ये एक अहम और आखिरी हक है, जिसे ये सोच कर अदा करना चाहिए कि आज इसको हमारी दुआओं की जरूरत है, कल हम भी इसी जगह बेबस पड़े दूसरों की दुआओं के मुख्ताज होंगे। जिंदगी में भी हम कहते हैं ना, भाई मेरे लिए दुआ करना, बहन दुआओं में याद रखना, तो बस कह लीजिए कि नमाज जनाजा दुआए मगफरत की एक मसनून सूरत है और गवाही भी है। फजीलत क्या है इसकी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, जो शख्स जनाजे में नमाज होने तक शामिल रहे, इसको एक किरात यानी एक पहाड़ के बराबर सवाब मिलेगा, और जो दफन तक रहे उसको दो किरात मिलेंगे। बुखारी की रिवायत है। तो नेकियों में हरीस होना चाहिए। किसी को कहा जाए बैठे रहो एंड तक तो $100 मिलेगा, और अगर रात भी गुजार दो तो 200 मिलेंगे, तो लोग रग़बत करेंगे ना। तो नेकियों में तो क्यामत के दिन एक एक नेकी की बहुत फिक्र होगी, कहाँ ये इतने पहाड़ों बराबर नेकियां। तो ये है जनाजा। अगले मरले पे चलते हैं, तदफीन, बरियल। तदफीन क्या है? कब्र दुनिया का आखिरी घर और आखिरत के घर का पहला दरवाजा। यहां मैं अपनी बहनों को चाहूंगी कि थोड़ा सा गौर करें, मेरा और आपका असल घर ये है। दुनिया में कितना बड़ा घर मेरे नाम पे हो, किस तरह लिया नाराजगी या रजामंदी से, ये मुझे यकीन है कि कोई मुझे मरने के बाद उधर एक कमरा भी नहीं देगा, एक रात नहीं रखेंगे, चलो भी घर के बैकयार्ड में ही दफना दो, नहीं करेंगे। तो जब दुनिया के घर हमारी तवज्जो लें और हमें माइल करें, तो इस तस्वीर को जहन में रख लें, और अगर बहुत ही हौसला है तो इसकी एक तस्वीर घर में लगा लें। आप इसी पावर पॉइंट को खींचें और अपने घर में लगा लीजिए। ये डेकोरेशन पीसेस हमें रखने हैं अपने घरों में इंशाल्लाह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो जब कभी कब्रों को देखते तो इतना रोते कि आपकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने इनसे पूछा कि जब आप जन्नत और जहन्नम का तस्करा करते हैं तब तो नहीं रोते और कब्रों को देखकर रो पड़ते हैं? फरमाया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कब्र आखरत की पहली मंजिल है, अगर वहां निजात मिल गई तो बाद के सारे मराहिल आसान हो जाएंगे, और अगर वहां निजात ना मिली तो बाद के सारे मराहिल दुश्वार हो जाएंगे। नबी सल्लम ने यह भी फरमाया कि मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं, कब्र का मंजर इन सब से ज्यादा हौलनाक है। ये मुसनद अहमद की रिवायत है, 454 नंबर की, और हसन हदीस है। अपने लिए सोचिए, अभी कोई आपको किसी क्लोजेट में बंद करना चाहे, पसंद करेंगे? हमें जिंदा होते हुए किसी घड़े में डालकर मिट्टी डाले तो कब्र से ज्यादा वाकई हौलनाक मंजर कोई नहीं है। हजरत बरा से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह के साथ एक जनाजे में थे, आप कब्र के किनारे बैठकर रोने लगे, हत्ता के मिट्टी आपके आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे भाइयों, इस दिन के लिए कुछ तैयारी कर लो। सोचिए, मैंने और आपने तैयारी की है? अगर हमने खुद तैयारी नहीं की तो हम दूसरों को इसकी रग़बत कैसे दिलाएंगे? और इब्ने माजा की ये रिवायत है, इसलिए हम सब को उस वक्त के आने से पहले तैयारी करनी है। खुद से पूछिए, मैंने तैयारी की? कोई बात नहीं, अभी मौका है, अभी हम जिंदा हैं, हम कर सकते हैं। इसके बाद अगली तस्वीर को देखिए। इस जगह के लिए आपने क्या तैयारी कर रखी है? फिर हजरत उस्मान के नाते से अल्लाह के नबी का यह फरमान याद करें कि मैंने कब्र से ज्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। तिर्मिजी की रिवायत है 2308। कितना तंग गड़ा है, करवट भी नहीं ले सकते। दुआ करें अल्लाह हमारी कब्र को खुला कर दे, हदे निगाह तक खुला कर दे। कब्र की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, एक है लहद यानी बगली और दूसरी है शक संदूकी, इसको दरीख कहते हैं। शक के अंदाज की कब्र भी जरूरतन जायज है, लेकिन लहद अफजल है। बुखारी है। थोड़ा सा आप नीचे से पिक्चर्स को देखें तो आपको दोनों का फर्क दिखेगा। आपके पिक्चर जो है उसमें राइट हैंड पे देखिए शक है। शक क्या है? संदूक, यानी जब हम खोलते हैं तो इसके बिल्कुल नीचे ही मुर्दा होता है। जबकि लहद क्या होती है? जहां आपको कब्र दिखती है ना, मुर्दा उससे थोड़ा सा हटके होता है। और दोनों में फर्क किस चीज का है? अगर आप इस पिक्चर को देख ले जो ऊपर लाइनें बनी हुई दिख रही हैं, तो इंशाल्लाह आप इसको समझेंगे। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है ना, डबल लाइन है डॉटेड, ये सीधी है शक में, जबकि दूसरी में ये इस तरफ है। ये है सोनेले की जगह, यानी शक में मुर्दा बिल्कुल उस कब्र के नीचे सीधा पड़ा होता है, जबकि लहद या बगली कब्र में मुर्दा उस वो ऊंची सी जो हीप की जगह ना जिसको खोदते, उससे साइड पे होता है, यानी एक संदूक के खाने में उसको बंद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी सल्लम ने फरमाया कि लहद हमारे लिए और शक गैरों के लिए है। अहमद अबू दाऊद और तिर्मिजी की रिवायत है। कब्र गहरी और साफ सुथरी होनी चाहिए। मैयत को कब्र में उतारने वाले हजरात मजबूत और परहेजगार होने चाहिए। औरत की तदफीन के वक्त पर्दे का इंतजाम हो। मैयत को पाइंदी की तरफ से कब्र में उतारा जाए, यानी पाँव के रास्ते से अंदर जाएगी। फिर मैयत को दाएं पहलू पर किबला रुख करके लेटाया जाएगा, यानी बिल्कुल सीधा नहीं मुर्दे को लेटाते, साइड बदलवा के। अपने साथ सोचिए ये सारे एक्शंस। आखिर में कफन के बंद की गिरहें खोलकर ये मसनून अल्फाज कहे जाएंगे, दोहरा लीजिए, बिस्मिल्लाही वाला मिल्लती रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जमा क्या है कि अल्लाह के नाम के साथ और रसूल के तरीके पर हम इसको रख रहे हैं। अगर साथ जो पिक्चर्स बनी हुई हैं अगर आप देखें तो ये जो खुली पिक्चर है पहले, ये शक है, बिल्कुल बीच में सीधी है, और जो दूसरी आपको दिख रही है उसमें आपको साइड पे गड़ा खुदा हुआ दिख रहा है, ये लहद है। और मुर्दा किस तरह से है ये भी देख लें, दोनों हाथ उसके आगे बंधे हुए हैं और किबला की तरफ उसका मुंह कर दिया जाता है, और टांगे एक साइड पे और चेहरा दूसरी तरफ है, और बैक उसकी खड़ी कर दी जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि लोग तो हमें छोड़ के आ गए, हमारे कब्र का साथी कौन होगा? ये असल बात है। हजरत अनस से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मरने वाले के साथ कब्र तक तीन चीजें जाती हैं, अहलो याल, माल और आमाल। अहलो याल और माल वापस हो जाते हैं, और आमाल अच्छे हों या बुरे कब्र में साथ रह जाते हैं। तिर्मिजी की रिवायत है 2379 नंबर की। सोचिए जरा, कोई भी काम करें अच्छा या बुरा, तो सोचिए इसको मैं कब्र तक जाऊंगी, मेरा और आपका आखिरी घर यही है। मसनून तरीका तो यही था, लेकिन कुछ लोगों ने लाइल्मी की वजह से कुछ नए तरीके ईजाद किए जिसको बिदत कहते हैं। तो आइए जरा आप इस पूरे सफर में कुछ बिदात को देख लेते हैं। मैयत की बिदात, बिदत क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बिदत का लफ्ज बदा से है, बा दाल आइन, इसका मानी क्या होता है? इजाफा, नया या अनोखापन। हदस है ना जैसे लफ्ज, वही लफ्ज बदा। हदस भी कहते हैं अरबी में बिदत को, दीन में कोई ऐसा नया तरीका या रस्म या काम सवाब की गरज से या नेकी का काम समझकर शामिल कर लिया जाए और इसे जरूरियात दीन का लाजमी हिस्सा समझ लिया जाए, जिसकी दलील कुरान और सुन्नत से ना मिलती हो, इसको बिदत कहते हैं। यानी आप कह लीजिए कि बिदत क्या है, मैन मेड नेकियां, सेल्फ क्रिएटेड रिलीजन। आप जिस मुल्क में रहते हैं उसका कानून तो आप खुद बना नहीं सकते, वो रेड पे रोकते हैं तो आप रुक जाते हैं, ग्रीन पे चलो तो चलते हैं, तो आप दीन के मामले में रेड को ग्रीन और ग्रीन को रेड कैसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ बिदात की अक्सरियत का ताल्लुक ऐसी खुद साख्ता रसूमात से है जो वो अजदाद और गैर मुस्लिम अकवाम की तकलीद में बनाई गई है, और अगरचे वो बतौर सवाब तो नहीं रवाज पा रही, मगर वो भी कुरान और सुन्नत की तालीमात, इस्लामी रिवायात और दीनी तकाजों के ऐन बरखिलाफ हैं। फिर इसी तरह कुछ बिदात को हम देखेंगे। पहली बिदत के कि बीमार की मौत वाकई हो जाने पर लवाहकीन का मैयत के गिर्द बैठकर बुलंद आवाज से नोहा करना, कितना आम है। आपका क्या ले गया, वो अल्लाह के हुक्म से आया था, अल्लाह के हुक्म से चला गया। फिर जब तक मैयत घर में हो 14 बार सूरत बकरा पढ़ना, यानी बेपनाह फजाइल वाली सूरत को इस मौके पर इस गिनती के साथ मखसूस कर लेना, जबकि किसी सही हदीस से तो दरकुनार, किसी ज़ईफ हदीस से भी इसकी कोई दलील नहीं मिलती, ये बिदत है। किसी का सवाल कल से मेरे सामने रखा हुआ है कि बिदत के वक्त 2.5 पारे पढ़ने की क्या हकीकत है, तो मुझे उम्मीद है कि जवाब मिल गया। मैयत की चारपाई के नीचे सरहाने की तरफ कच्चे चावल या गंदुम रखना और दफनाने के बाद इसे खैरात करना, ये भी बिदत है। बीवी के फौत होने पर खावंद के लिए बीवी को गैर महरम करार देना और इसी तरह खावंद के फौत हो जाने पर बीवी को मैयत के पास ना आने देना और ना ही देखने देना, ये सब बिदात है। गुसल की कुछ बिदात और गैर इस्लामी रसूमात देखते हैं। मैयत को गुसल के वक्त दुआएं, नातें या कोई अशार वगैरह पढ़ना, मैयत को 2 बार गुसल देना, किसी खास इलाके या जगह की मट्टी को मुतबर्रिक समझकर इसे गुसल के वक्त इस्तेमाल करना, ये सब बिदात है। कफन की बिदात और गैर इस्लामी रसूमात, कफन पर आयात तो पाकीज़ा कलिमात लिखना या इनको कागज या कपड़े पर लिखकर मैयत के सीने पर रखना, इससे क्या होगा, जिंदगी में ये याद होती तो अंदर होती, अब तो बाहर है। कफन आबे जमजम में भिगोना, उड़ जाएगा, पानी सूखेगा तो सब खत्म, और ना भी उड़े लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं किया, जो वहां रहते थे सहाबा ने नहीं किया, तो मैं और आप कैसे कर सकते हैं। मैयत दूल्हा या दुल्हन है या अनकरीब शादी होने वाली थी तो कफन की बजाय शादी के लिबास में या सेहरा बांधकर दफनाना, सोचिए कितनी हम करना बात है। जनाजे की बिदात और गैर इस्लामी रसूमत, जनाजे को फूलों से या कुरानी आयात लिखी हुई चादरों से सजा कर ले जाना, कितना मारूफ है हमारे यहाँ, फलां ने आकर चादर चढ़ाई, जायज नहीं है। किसी मखसूस रंग की मसलन काली या सब्ज चादर ही जनाजे पर डालना, फोटोग्राफी करना, इस मौके पर खास तौर पर सदका खैरात का एहतमाम करना, घर के दरवाजे से जनाजा निकालते हुए कुरान पाक का साया करना, जनाजे को फौत शुदा खानदानी पीरों के मजारों के गिर्द तवाफ करवाने ले जाना, अल्लाह अकबर। जनाजे को ले जाते हुए रास्ते में कलमा शहादत बुलंद आवाज से पढ़ना या इसके पढ़ाने के लिए सदा लगाना, जनाजे के साथ 7 यानी 7 फल, मिठाई, खुश्क मेवे वगैरह ले जाकर कब्र पर तकसीम करने की रस्म करना। मुझे लगता है हमारे कल्चर में बहुत ही रिवाज है मर्च मसाले डालने का, चीजों का एक्स्ट्रा करने का, ये भी कुछ उसी किस्म की बात है। तो याद रखिए ये सब कुछ करके हम क्या कहते हैं कि हमने अल्लाह के दीवे दीन को रिजेक्ट कर दिया, और अगर हम हकीकत में जाने वालों की मौत से इबरत लेते तो हमारी अपनी जिंदगियां बदलती। कर क्या सकते हैं किसी के जाने पर, उसकी मौत से इबरत ले, नसीहत ले कि अल्लाह वो तो चला गया, मैं अभी बाकी हूं, मुझे अपने ऊपर रखना है। सारा कुछ सुन लिया हमने, करें क्या। पहली बात नंबर 1, अल्लाह ताला से मुलाकात की ख्वाहिश रखें। फिर दूसरी बात, मौत से नफरत नहीं करनी। फिर मौत की आरजू करना नाजायज है, और अगर कभी जीना मुहाल लगे तो दुआ पढ़नी है کہ اللہم احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ذا کانت الوفات خیر لی. پھر شہادت کی موت کے لیے آرزو اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ، اور اس سب کے آگے چیک لسٹ بنا لیں اپنے لیے. پھر دنیا میں ہی رہتے ہوئے موت کی سختیوں کی دعا کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ اللہ اس وقت مجھے صبر دینا. پھر موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے. پھر زندگی میں لا الہ الا اللہ کو اپنے سینے کی بہار بنانا ہے تاکہ مرتے وقت زبان پہ جاری ہو جائے. پھر ہر وقت استغفار کرنا ہے، شاید کوئی وقت موت کا ہو اور اس وقت موقع نہ ملے. خاتمہ بالخیر کی دعا کرنی ہے. کچھ علامتیں بھی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کیسے مرا. مثلا موت کے وقت پیشانی پہ پسینہ آ جائے، یہ ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقے سے دکھاتا ہے کہ کس کے کیا معاملے ہیں، اور صحابہ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوا تھا. مثلا جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے. یعنی اگر کوئی جمعے کی رات کو فوت ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث کی روشنی میں اس کو موت کا فتنہ نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا دے گا. پھر اسی طرح سے ایک اور بات یاد رکھیے کہ شہادت کی موت قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے. پھر قرض آ گیا، حتیٰ کہ شہادت بھی قرض کو معاف نہیں کراتی. پھر اسی طرح اچانک موت جو ہے نا، یہ مومن کے لیے رحمت ہے اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے. اپنے لیے چیک کریں کہ میرا معاملہ کیسا ہے. آج بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ ایسے معاملات دکھاتا ہے. کچھ لوگ قبر کھودتے ہیں اور کہتے ہیں، کسی کی بات میں نے سنی کہ سعودی عرب کی گرم ترین دوپہروں میں کسی کی قبر کھودی تو اندر اتنی ٹھنڈک تھی کہ ایسے لگ رہا تھا کہ اے سی چل رہے ہیں. جی بالکل، اللہ تعالیٰ جس کا انجام اچھا کر دے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں. شہید کی موت بہت آسان ہے. یعنی اگر ہم یہ پوچھیں کہ کس پر موت آسان ہے تو شہید پر. حدیث میں آتا ہے جو میدان جنگ میں گھر جائے اللہ اس کی سکرات کو ہلکا کر دیتا ہے. شہید کو قتل کی تکلیف نہیں ہوتی سوائے چونٹی کے کاٹنے کے. جی حضرت عثمان غنی کی جب موت کا وقت آیا، 20 غلام آزاد کیے اس دن. عام طور پہ چادر باندھتے تھے لیکن اس دن پاجامہ پہنا، کیونکہ بڑے ظلم کے ساتھ شہید کیے گئے تھے تو ان کو ڈر تھا کہ کہیں میرا ستر نہ کھلے. پھر نہا دھو کے صاف ستھرے ہو کر بیٹھ گئے، روزے سے تھے. اللہ نے خواب میں دکھا دیا کہ عثمان آج کا روزہ تم ہمارے ساتھ افطار کرو گے. قرآن کھولا اور پڑھنے لگ گئے، اور جب ان آیتوں پہ تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پسند قریب اللہ تجھے ان سے کفایت کرے گا، تو دشمنوں نے دروازہ کھول کر ان کو شہید کیا. آج بھی یہ قرآن موجود ہے ان کے خون کے نشان کے ساتھ. سعد بن معاذ صحابی تھے، ان کی وفات کا وقت ہوا. ان کی ماں رونے لگی، آنسو ہی خشک نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے کہا کیا ہوا، تمہارے آنسو خشک کیوں نہیں ہوتے، تمہیں صبر کیوں نہیں آ رہا، کیا تمہیں نہیں پتا تمہارا بیٹا وہ ہے کہ سب سے پہلے جس کے لیے اللہ نے آسمان سے مسکرا کر دیکھا تھا اور اس کے ساتھ اپنا معاملہ کیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کو دکھائیں جو عام طور پہ نہیں ہوتی. عرش کام کیا تھا حضرت سعد بن معاذ کی وفات پر. فرمایا ان کے جنازے کے ساتھ وہ 70,000 فرشتے اترے کہ جو کبھی نہ اترے تھے. اس کے باوجود جب ان کو قبر میں ڈالا گیا تو قبر نے ان کو جھنجھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اگر قبر کے جھنجھوڑنے سے کوئی بچتا تو ساتھ ضرور بچتا، لیکن یہاں تو بچے بھی نہیں بچتے. تو قبر ایک دفعہ تو جھنجھوڑتی ہے. اور اسی طرح ایک عورت حضرت آسیہ، ان کی موت قرآن میں بیان ہے. کہتے ہیں کہ جب بھی موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ ہوتا تو یہ پوچھتی تھی کون غالب رہا. جب بتایا کہ موسیٰ تو کہنے لگی آمنت بربی موسیٰ و ہارون. فرعون کہتا جاؤ اس کو میرا خدائی پیش کرو، اور اگر یہ ہاں نہ کرے تو بڑا سا پتھر اس پر ڈال دو اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کیلوں میں ڈال دو. اور جب ایسا ہی وہ کرنے لگے تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اور اللہ نے ان کے لیے آیتیں نازل کر دی. تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا میرا وقت کب آئے گا اور آپ کا وقت کب آئے گا. ہمیں اپنی فکر کرنی ہے. خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. اب لوگ کہتے ہیں क्या उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे? आप पढ़ दीजिए, आगे अल्लाह का मामला उस पर डाल दें। कुछ लोगों का नसीब कुछ होता है, कुछ का कुछ और होता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि मौत एक अटल हकीकत है, इसके लिए तैयार रहना है। हम अल्लाह ताला से दिल की गहराई से ये दुआ करेंगे कि जब हमारी मौत का वक्त आ जाए तो अल्लाह ताला तो हमसे राजी हो जाना, और आज इस जिंदगी में हमें कुछ करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी हमने इस सेशन में पढ़ा, अल्लाह ताला उसमें खैर को और अच्छी बातों को कबूल करे, और जो भी कमी बेशी थी उससे दरगुजर फरमाए। जजाकअल्लाह खैर वाप सब के आने का। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى خير خلقه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.